नमस्कार मित्रों, ओशो रेडियो में आप सभी का स्वागत है। ओशो के जगत में हम आज महावीर वाणी को सुनेंगे। महावीर जयंती करीब है, ये एक बेहतरीन अवसर है कि ओशो के साथ हम भगवान महावीर के सूत्रों में गहरे प्रवेश कर सकें। मोर एंड मोर, डीप एंड डीप।
जन्म दिया जगवाई। गुरु ने आवा गमन छुटाए, गुरु ने आवा गमन छुटाए, गुरु ने आवा गमन छुटाए, गुरु ने आवा गमन छुटाए।
हरि ने पांच छोर दिए साथ, हरि ने पांच छोर दिए साथ,
गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा। राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो,
गुरु को सम हरि को ना निहारो,
गुरु को सम हरि को ना निहारो,
गुरु को सम हरि को ना निहारो,
गुरु को सम हरि को ना निहारो, गुरु को सम हरि को ना निहारो। गुरु को सम हरि को ना निहारो, राम तजो पर, राम तजो पर, राम तजो पर।
आज का प्रवचन महावीर वाणी भाग दो से लिया गया है। प्रस्तुत प्रवचन में भगवान महावीर के एक सूत्र की व्याख्या करते हुए ओशो कहते हैं कि जो हम होना चाहते हैं उसके लिए आकांक्षा जरूरी नहीं है, धारणा जरूरी है, उस चीज के प्रति गहन भाव जरूरी है। हमारे प्राण शरीर में उस चीज को बीज रूप में आरोपित करना जरूरी है, वही फिर आगे वृक्ष बन जाता है। धारणा को भगवान महावीर ने पहले सोपान पर रखा है। ये पहला कदम है, बहुत छोटा लेकिन आवश्यक। धारणा की शक्ति परिणाम के लिए आवश्यक है।
अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु केवली पड़ा तो धम्मो लोगुत्तमो। अधिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली प्ररूपित अर्थात सर्वज्ञ कथित धर्म मंगल है, अरहंत लोकोत्तम संसार में श्रेष्ठ है, सिद्ध लोकोत्तम है, साधु लोकोत्तम है, केवली प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है।
महावीर ने कहा है जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएं। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते। अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो, तो उसे देखना, उसकी भावना करनी, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती। चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो, चाहे बीमारी को, सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते। ये जो मंगल की स्तुति है कि अरिहंत मंगल है, ये प्राण शरीर में बीज डालने का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है, जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते। इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ मंगल का भाव है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है। सिर्फ मंगल का भाव। ये जान के हैरानी होगी कि मन का नियम है जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती। आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती। धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में कीमती अंग है, जहां से अंतरयात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि, 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये जो मंगल की धारणा है ये पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का 1वां। क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है हमारी चेतना रूपांतरित होती है, न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते। इसलिए महावीर ने कहा है अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है, चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं हों उस मिल्यू में, उस वातावरण में रहना मंगल है। रूस के एक विचारक जो अकुपंक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोस की धारणाओं से इम्पोज किए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो, वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है, भीड़ में एक आदमी जमाई लेता है और 10 आदमी उसी क्षण अलग अलग कोनों में बैठे हुए जमाई लेना शुरू कर देते। सरों को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया। अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती। अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है, दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है। कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है, उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2,00,000 मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट लाए। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलके आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माय सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौट आई और कहा कि व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े हो। मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे। तो स्टालिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा, उस आदमी ने, नामोव ने कहा है कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा, वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे, उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो, उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक ले। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए, अपनी ही राजधानी पे गिरा दे। नामोव ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वार इज गोइंग टू बी साइकिक पावर्स। ये जो ये धारणा की जो शक्ति है, ये आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी, महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। इसलिए मंगल की धारणा, महावीर ने कहा है, भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वो परिणाम ला सकती है। स्वभावतः मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है। वे जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए, वे मंगल है। सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, और जाना जिन्होंने, जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता, जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता, ओनली नोइंग। केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मात्र ज्ञान रह गया, जहां जहां ना कोई जानने वाला बचा, जहां मैं का कोई भाव ना बचा, जहां कोई गे ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझे कि हम एक कमरे में दिया जलाएं तो दिए की बाती है, तेल है, दिया है, फिर कमरे में दिए का प्रकाश, और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, दीवार है, आप है। अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया, न दीवार है, न फर्नीचर है, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी ना रहा, दिए की देह भी ना रही, सिर्फ ज्योति रह गई, प्रकाश मात्र रह गया, ना तो दिया बचा और ना प्रकाशित वस्तुएं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं, और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के संबंध में, जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है, वहां ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं होता। क्योंकि बात बहुत कीमती है, जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी ना कभी चुक जाती, चुक ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो, सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन, बड़ा है स्रोत, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन 4,000-5,000 साल रोशनी देगा, लेकिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है, चुक जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है, ये अनंत है, ये कभी चुक नहीं सकती, ये स्रोत रहित है, इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता, वो बस है, इट जस्ट इज, कहीं से आता नहीं, अन्यथा एक दिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा हो, चुक जाएगा, महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते, कितना ही लंबा समय लगे, तो महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते हैं। एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती है, फिर और ज्यादा कम होता जाएगा। महावीर कहते हैं जो चेतना है ये स्रोत रहित है, इसलिए महावीर ने ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया, क्योंकि अगर ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिए हो जाते, तो हम चुक जाएंगे। सच है ये कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी है। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसका स्रोत अलग नहीं है, ये ज्योति ही स्वयं स्रोत है। ये जो भीतर जलने वाला जीवन है ये कहीं से शक्ति नहीं पाता, ये स्वयं ही शक्तिवान है। ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, नहीं तो किसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं तो मोहताज रहेगा। ये किसी से कुछ भी नहीं पाता, ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है। जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, सोर्स लेस, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं। जैन परंपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है। वो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, वो क्राइस्ट हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो लाओस से हो सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम कृष्ण मंगलम, ऐसा नहीं कहा। जैन धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा, हिंदू धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, वो जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनके द्वारा जो भी प्रूपित धर्म है वो मंगल है। वो कहीं भी हो, जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया उन्होंने जो कहा है वो मंगल है। ये मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं, हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी पता नहीं चलता। धारणा पहला कदम है, कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते? नहीं भी सोचा होगा सचेतन रूप से तो भी अचेतन में चलता है कि आप क्या होना चाहते। जो आप होना चाहते हैं उसी के प्रति आपके मन में आदर पैदा होता है। न केवल आदर, जो आप होना चाहते हैं उसी के संबंध में आपके मन में चिंतन के वर्तुल चलते हैं। वही आपके स्वप्नों में उतर आता है, वही आपकी सांसों में समा जाता है, वही आपके खून में प्रवेश कर जाता है। और जब मैं कहता हूं खून में प्रवेश कर जाता है तो मैं कोई साहित्यिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शारीरिक तथ्य की बात कह रहा हूं। इधर प्रयोग किए गए हैं और चकित करने वाले सूचन मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिलावार प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे की धारणा का भी, आपकी धारणा को छोड़ दें, आपकी धारणा का तो पड़ेगा ही, दूसरे की धारणा का भी, अप्रगट धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए, आपके खून में सफेद वाइट ब्लड सेल्स, सफेद जो कोष हैं खून के, वो 1500 बढ़ जाते। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते हैं तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। वो जितने ज्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वो आपके पहरेदार है। आपने देखा होगा, ख्याल नहीं किया होगा, चोट लग जाती है तो चोट लग के जो आपको मवाद पड़ जाती है, वो मवाद सिर्फ रक्षक हैं आपके शरीर के, खून के सफेद कण वे भाग के फौरन एक परत पहरेदारी की खड़ी कर देते। जिसको आप मवाद समझते हैं वो मवाद नहीं है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, वो खून के सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़ के घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया हो, क्योंकि उनके परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो रक्षक है। दिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए, ये संभव है? अब तो इनकार करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बाद दूसरा एक बड़ा नाम एक अमेरिकन का है, क्लीव बैकस्टर का। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है, बैकस्टर ने सिद्ध किया है, सिद्ध हो गया है कि पौधों में भावना भी है, और पौधे अपने मित्रों को पहचानते हैं और शत्रुओं को भी। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है, अपने माली को भी, और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राणधारा छीन हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। पौधों की स्मृति को भी बैकस्टर ने सिद्ध किया कि उनकी भी मेमोरी है, और जब आप अपने गुलाब के पौधे के पास जाके प्रेम से खड़े हो जाते हैं तो वो कल फिर आपके उसी समय प्रतीक्षा करता है। वो याद रखता है आज आप नहीं आए। या जब आप पौधे के पास प्रेम से भर के खड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक फूल तोड़ लेते हैं तो पौधे को बड़ी हैरानी होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस सब की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र तैयार किए हैं बेकस्टर ने कि पौधा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि जो आदमी इतने प्रेम से खड़ा था उसने फूल कैसे तोड़ लिया। वो ऐसे कंफ्यूज हो जाता जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो प्रेम करते करते एकदम गर्दन तोड़ ले कि चेहरा बहुत अच्छा लगता है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि ये हो क्या गया, उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। बेकस्टर कहता है हमने हजारों पौधों को कंफ्यूज किया हुआ, उनको हम बड़ी परेशानी में डाले हुए, वो समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहे थे वो एकदम शत्रु की तरह हो जाता। बेकस्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं वो हमारी तरफ बड़ी पॉजिटिव भावनाएं छोड़ते हैं। और बेकस्टर ने सुझाव दिया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को कि शीघ्र ही हम विशेष तरह के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर उन पौधों को हमने इतना प्राणवान कर दिया प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया तो उनके पास विशेष तरह के मरीज ले जाने से फायदा होगा। फिर हर पौधे में अपनी अपनी प्राण ऊर्जा की विशेषताएं हैं। जैसे रेड रोज, लाल जो गुलाब है, वो क्रोधी लोगों के लिए बड़े फायदे का, हो सकता है पंडित नेहरू को इसलिए उससे प्रेम रहा हो। क्रोध के लिए रेड रोज बहुत फायदे का है बेकस्टर के हिसाब से। वो क्रोध को कम करता है, वो अक्रोध की धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है, पौधों के पास भी हृदय है। माना कि वे अशिक्षित हैं लेकिन उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता लेकिन हृदय खोता चला जाता। ये धारणा हृदय को जन्माने का आधार बन सकती, मंगल की धारणा। निश्चित ही मंगल की धारणा, हम इतने कमजोर हैं और अमंगल हमें इतना सहज है कि हम अरिहंत पर भी मंगल की धारणा कर पाए तो चमत्कार है। हम ये भी कह पाए कि अरिहंत मंगल है तो भी मिरेकल है। पत्थर मंगल है इसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी, दुश्मन मंगल है इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी, शत्रु मंगल है इसके लिए तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। महावीर आपको भली भांति जानते हैं, जो श्रेष्ठतम है जिस पर भी आपको कठिनाई पड़ेगी करने में मंगल की धारणा, उससे शुरू करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन्होंने जाना उनके द्वारा प्ररूपित धर्म। धर्म का जैन परंपरा में वैसा अर्थ नहीं है जैसा अंग्रेजी के रिलीजन का या उर्दू के मजहब का, और वैसा अर्थ भी नहीं है जैसा हिंदू धर्म का। जैन परंपरा में धम्म का जो अर्थ है वो समझ लेना चाहिए, वो बहुत खूबी का है, विशिष्ट है और जैन दृष्टि को एक एक नए आयाम में फैलाता है। मजहब का अर्थ होता है क्रीड, एक मत, एक पंथ। अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का अर्थ होता है करीब करीब वही जो योग का अर्थ होता है। वो जिस सूत्र से बना है रिलीगेर, उसका अर्थ होता है जोड़ना, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। योग का भी वही अर्थ होता है, आदमी को परमात्मा से जोड़ना। लेकिन जैन चिंतन परमात्मा के लिए जगह ही नहीं रखता, इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे कि जैन योग का अच्छा अर्थ नहीं मानते। जैन कहते हैं केवली अयोगी होता है, अयोगी, योगी नहीं। इसलिए महावीर को ना समझ कुछ भूल से भरे लोग महायोगी कहते हैं, वो गलती कहते हैं, वो जैन परंपरा के शब्द का उन्हें पता नहीं। महावीर कहते हैं जुड़ना नहीं है किसी से, जो गलत है उससे टूटना है, अलग होना है, अयोग, संसार से अयोग, तो स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलन, तो स्वरूप उपलब्ध होता है। महावीर कहते हैं स्वरूप उपलब्ध ही है, जो हमें पाना है वो हमें मिला ही हुआ है, सिर्फ हम गलत चीजों से चिपके खड़े हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, गलत को छोड़ दें, अयुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। इसलिए जैन परंपरा में अयोग का वही मूल्य है जो हिंदू परंपरा में योग का, धर्म का बड़ा अनूठा अर्थ जैनों का है। महावीर कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, नेचर। धर्म का महावीर का वही अर्थ है जो लाओसे के ताओ का, वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी स्वयं की अपनी परिणति है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी से प्रभावित हुए सहज वरण चरण कर पाए तो धर्म को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रभावित हुए, इसलिए प्रभाव महावीर अच्छी बात नहीं मानते, किसी से भी प्रभावित होना बंधना है, सब इंप्रेशंस बांधने वाले, पूर्णतया अप्रभावित हो जाना, निज हो जाना है, स्वयं हो जाना है। इस निजता को, इस स्वयं होने को वे धर्म कहते हैं। केवली प्रूपित धर्म का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, चेतना मात्र रह जाता है, तब वो जैसे जीता है वही धर्म है। उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका हलन चलन, उसका सोना, वो जो भी करता है, उसकी आंख के पलक का है उठना और हिलना, उसकी समस्त अस्तित्व में प्रकट होती हुई जो भी किरणें हैं वही धर्म है। जैसे अग्नि अपने शुद्ध रूप में जलती हो तो धुआं पैदा नहीं होता। आप कहेंगे अग्नि तो जहां भी जलती वहां धुआं पैदा होता, तर्क की किताबों में लिखा हुआ है जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, इसलिए जहां धुआं दिखे मान लेना कि अग्नि। लेकिन धुआं अग्नि से पैदा नहीं होता, केवल ईंधन के गीलेपन से पैदा होता है, अग्नि से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर ईंधन बिल्कुल गीला ना हो तो धुआं पैदा नहीं होता। धुआं अग्नि का स्वभाव नहीं है, ईंधन का प्रभाव है। जो ईंधन गीला होता है तो पैदा होता है, तो कहना चाहिए कि वो पानी से पैदा होता है, वो अग्नि से पैदा नहीं होता धुआं। अगर बिल्कुल सूखा ईंधन है जिसमें पानी जरा भी नहीं है तो धुआं पैदा नहीं होगा, और अगर पैदा होता है तो जानना कि थोड़ा बहुत ईंधन गीला है। अग्नि जब अपने शुद्ध रूप में होती है, जब उसमें कोई दूसरा विजातीय फॉरेन एलिमेंट नहीं होता, तब उसमें कोई धुआं नहीं होता। महावीर कहते हैं तब अग्नि अपने धर्म में, जब कोई धुआं नहीं। जब चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है और पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर का पता भी नहीं होता, जब चेतना इतनी शुद्ध होती है कि शरीर का पता भी नहीं होता, तब महावीर कहते हैं जानना कि चेतना अपने धर्म में। इसलिए महावीर कहते हैं प्रत्येक का अपना धर्म है, अग्नि का अपना है, जल का अपना है, पदार्थ का अपना है, चेतना का अपना है। शुद्ध हो जाना अपने धर्म में आनंद है, अशुद्ध रहना अपने धर्म में दुख है। तो धर्म का यहां अर्थ है स्वभाव, अपने स्वभाव में चले जाना, धार्मिक हो जाना है। और अपने स्वभाव के बाहर भटकते रहना अधार्मिक बने रहना।
Thank you.
आज के प्रोग्राम में म्यूजिक चिन्मय डंस्टर, प्रेम जोशुआ, देवा प्रेमल और मितिन, और म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से लिया गया है। तो मित्रों, सजग रहना है अपनी धारणाओं के प्रति, निरंतर डूबे रहना है मंगल कामनाओं में, हमेशा अग्रसर रहना है उत्तम की ओर, और फिर अस्तित्व का श्रेष्ठतम हमें मिलेगा, जो है आनंद, जो है पाने योग्य। विदा लेते हैं आपसे, सुनते रहिए महावीर पर ओशो की प्रवचन मालाएं, महावीर वाणी, जिन सूत्र, महावीर या महाविनाश, महावीर मेरी दृष्टि में, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया। ओशो के आशीष और प्रेम के साथ हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सबको।
Into the heart of love, deeper, letting go into the mystery, letting go into the mystery, letting go into the mystery, rising. Rising in love, deeper into the heart of love. Rising.